खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और आप सबको ग्रेस बाइबल चर्च चारावाला में खुश आमदीद कहा जाता है। इससे पहले कि कलाम खुदा को सीखना शुरू करें, खुदावंद के जूर में झुकेंगे और वो हमारे दिलों, गुर्दों, सोचों, ख्यालों से बाखूब वाकिफ है। उसने कहा कि जब भी तुम मेरे पास आओ, अपना सारा बोझ, अपनी सारी परेशानियों को, अपनी सारी फिक्रों को मुझ पर ला दो और मुझसे सीखो, मेरा जुआ नरम और हल्का और मुलायम है। अपनी सारी फिक्रों को, अपनी सारी परेशानियों को, हर तरह की तवज्जो को बांटने वाली उन बातों को, सोचों को रद्द करते हुए सिर्फ यीशु मसीह की तरफ अपनी तवज्जो लगाएंगे, खुदावंद के जूर झुक जाएंगे और खामोशी में हर एक के लिए ये मौका है कि अपनी अपनी हालत का जायजा ले, ताकि हम रूहुल कुद्दस की मामूरी में मामूर होकर खुदावंद के कलाम को समझने वाले बने। कादर मुतले खुदा, तेरा शुक्र करते हैं तेरे इंतजाम के लिए जो रूहुल कुद्दस की मामूरी तूने ईमानदारों को बख्शी है, और सबसे बढ़कर खुदावंद इस भेद के लिए कि तूने जाहर किया कि किस तरह रूहुल कुद्दस से मामूर हो, इस इंतजाम के लिए, इस बरकत के लिए। और खुदावंद खुदा, हर वक्त ईमानदारों को तेरे फजल के तख्त के पास बड़ी दलेरी है और उन्हें ये खुदावंद खुदा रसाई हासिल है रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में, मामूरी में, के तेरे तख्त के पास आएं और हर रोज अपनी रूहों को सेर करें और तेरा मकसद जो इस जिंदगी में तूने जमीन पर बख्शा है पूरा करने वाले बने। आज के कवाम को खुदावंद खुदा, जो तूने हम सब की रहनुमाई के लिए तैयार किया है, हम सबको बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जैसा कि कलाम खुदा में से हम सीख रहे हैं, सेठ यानी कि मसीह यीशु में ईमानदार की हालत, मकाम और वो क्या है, उसकी पहचान क्या है। हम जैसा कि रूहुल कुद्दस के बारे में सीख रहे हैं और इफ्सियों का खत का मतालिया कर रहे हैं, इफ्सियों का खत का जो मजमून, जो मतालिया करने का हमारा तरीका कार है, वो तीन स्टेप जो हमने चुने हुए हैं वो है सिट, वॉक, स्टैंड। मसीह यीशु में अपनी हालत को जानना यानी कि सिट, वॉक यानी कि किस बुलावे के लिए बुलाए गए हैं, और स्टैंड यानी कि यीशु मसीह के लिए रूह की तलवार और रास्तबाजी के हथियार बांधकर कायम रहना, उसके लिए खड़े होना इस दुनिया में मुखालफ के सारे जलते हुए तीरों के सामने। और रूहुल कुद्दस के बारे में हम सीख रहे हैं कि रूहुल कुद्दस कौन है, वो क्यों बख्शा गया और कब ईमानदारों को दिया जाता है, और उसकी कुदरत जो बेहद ईमानदारों के अंदर है, उसका मकसद क्या है और ये कुदरत किस लिए दी गई है, इन बातों को हमने सीखा है। आज हम और गहरी सच्चाइयों को सीखेंगे, सिर्फ कॉन्टैक्ट के तौर पर, राबते के तौर पर। इफ्सियों दो बाप उसकी 22वीं आयत को पढ़ेंगे और उन सच्चाइयों के बारे में सीखेंगे। और यहां पर यूं लिखा है 22वीं आयत में, और तुम भी उसमें बाहम तमीर किए जाते हो, यानी कि हर एक ईमानदार खुदा में तमीर किया जाता है ताकि रूह में खुदा का मस्कन बने, मस्कन बने, खुदा का सुकूनत गाह, खुदा की सुकूनत गाह बने, खुदा के रहने की जगह। और ये आयत हमें सिर्फ यहां तक ही नहीं सिखाती, बल्कि और गहरे तौर पर इसका मफहूम है कि तुम जो खुदा का मकसद मकदस बन गए हो, दूसरों तक भी ये बात पहुंचाओ कि तुम कैसे नए इंसानियत में शामिल होकर यीशु मसीह पर ईमान लाने से किस तरह बाहम हमारे साथ तमीर किए जा सकते हो। और सिर्फ फेथ अलोन, क्राइस्ट अलोन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने के बायस। हमने पिछले दिनों में 5 अनामात के बारे में सीखा जो फतेहमंद जिंदगी गुजारने के लिए ईमानदारों को दिए जाएंगे जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो ईमानदारों को वो इनामात दिए जाएंगे। आपसे सिर्फ मैंने 5 वो ताज खुदावन के कलाम में से शेयर किए थे जो कि खुशी का ताज है, उसके बाद फखर और जलाल का ताज है, और उसके बाद रास्तबाजी का ताज है, और उसके बाद आजमाइशों में गालबाने आजमाइशों में मकबूल ठहरने वालों के लिए क्या है, जिंदगी का ताज है, और उसके बाद पासबानों के लिए क्या है, वो सेहरा है जो जलाल का सेहरा है जो मुरझाने वाला नहीं। इन 5 ताजों के बारे में हमने सीखा। बाइबल मुकद्दस बहुत सी नेमतों बरकतों के बारे में जो ईमानदारों के लिए खुदा बाप ने यीशु मसीह के वसीला से तैयार की हैं उन्हें देना चाहता है, और रूहुल कुद्दस की कुदरत ईमानदारों को इसीलिए दी गई है ताकि उन अनामात को हासिल करें, उन बरकात को हासिल करें, उन तमाम अजरों को जो खुदा ने अजर ईमानदारों के लिए रखे हैं उनको हासिल करें। और मकाशफा की किताब का जब हम मतालिया करते हैं तो मकाशफा 3 उसकी 11वीं आयत में यीशु मसीह जो कलाम करता है वो क्या कहता है, मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। छीनने से मुराद ये हमेशा की जिंदगी नहीं कि हम खो देंगे, बल्कि ये वो अजर है जो ईमानदार जब यीशु मसीह की मर्जी के बगैर उसके साथ रफाकत के बगैर जिंदगी गुजारेंगे तो इब्लीस उनको उन अनामात से उन बड़े बड़े अजरों से जो खुदा ने अपने ईमानदारों के लिए रखे हैं उनसे महरूम हो जाएंगे। और यीशु मसीह कहता है कि अपने उस ताज को थामे रख ताकि कोई तुझसे छीन ना ले। किस तरह हम इस ताज को थामे रहेंगे, और हमने सीखा पालूस रसूल कहता मैंने ईमान को महफूज रखा, मैंने ईमान को महफूज रखा। ईमान को महफूज रखने से मुराद है कि ईमान के बारे में बातचीत करना कि मैं क्या ईमान रखता हूं और मेरी बुनियाद क्या है। और जब ईमान ताजा दिन ब दिन होगा जैसे कि शब छुरी को या किसी तलवार को म्यान में रख दिया जाए तो वो साल बाद वैसी धार नहीं रखेगी बल्कि उससे जंग लग जाएगा। ऐसे ही ईमानदार है अगर वो अपने ईमान का प्रचार या अपने ईमान के बारे में ना बताए या उसको ना जाने के वो उसकी जिंदगी की बुनियाद और ईमान क्या है, तो वो ऐसे ही है जैसे तलवार म्यान में जंग को हासिल करती है लेकिन वो अपनी उस धार को अपनी उस चमक को खो देती है। इसी तरह ईमानदार भी अपनी जिंदगी में उन अजरों को खो सकते हैं जब अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे। सो यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं जल्द आने वाला हूं, मकाशफा 22 उसकी 12वीं आयत में, और हर एक के काम के मुआफक देने के लिए अजर मेरे पास है। यीशु मसीह ईमानदारों के लिए बहुत से अजर रखता है, लेकिन आज हम जो सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस के वो आयना है जो नस्ले इंसानियत की सच्ची हालत और सूरत को जाहिर करती है। दोबारा रिपीट करूंगा, बाइबल मुकद्दस वो आयना है जो कि नस्ले इंसानी की सच्ची हालत और सूरत को जाहिर करती है। यानी कि अगर कोई यीशु मसीह से लहदा है तो उसकी हालत और उसकी सूरत क्या है, अबदी मौत और खुदा से अबदी जुदाई और हर तरह की तारीकी में उसकी जिंदगी का क्या होगा, बसेरा होगा। ये है उन लोगों की सूरत और हालत जो यीशु मसीह से लहदा उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल ना करेंगे, वो इस तरह की हालत और सूरत को देखेंगे। बाइबल मुकद्दस बहुत वाज़ह तौर पर कहती है, लेकिन बाइबल मुकद्दस ایمانداروں کے لیے بھی ایسا ہی کلام کرتی ہے واضح طور پر کہ ایماندار جو یسوع مسیح میں ایمان رکھتے ہیں، جو ایماندار بنتے ہیں، ان کی حالت، ان کی صورت، ان کی حالت یہ کہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھائے جائیں گے اور آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکات انہیں بخشی جائے گی، اور انہیں خدا نے اپنے لے پالک بیٹے، انہیں وعدہ کے فرزند، انہیں بہت سے ایسے نام دیے گئے ہیں جو ہم نے افسیوں کے خط میں سے سیکھے ہیں. پہلے باب میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے انعامات، بہت سے ٹائٹل جو ایمانداروں کے لیے ہے، ان کی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے، صورت کو ظاہر کرتی ہے. صورت کیا؟ یسوع مسیح کے مانند بننا، یسوع مسیح کی مانند بننا. یہ بائبل مقدس جو آئینے کے طور پر ایمانداروں کو بڑے واضح طور پر کہتی ہے ان کی حالت کے بارے میں اور ان کی صورت کے بارے میں. اور میں سوچ رہا تھا کہ ہر ایک چیز کے پیچھے مقصد ہوتا ہے، جیسا کہ میں سوچ رہا تھا کہ گریس بائبل چرچ اور خدا کا کلام بڑے واضح طور پر میرے ذہن میں، دل میں آیا کہ گریس یعنی کہ خدا سب کام کو کرتا ہے اور بنی نو انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور بنی نو انسان ان سے برکات پاتا ہے بخشش کے طور پر. یہ ہے فضل، جسے گریس کہا گیا ہے انگلش میں. بائبل یعنی کہ یسوع مسیح کا کلام ایمانداروں کی بنیاد ہے، اور بائبل مقدس ہر ایک ایماندار کی روز مرہ کی خوراک ہونا ضرور ہے. گریس بائبل چرچ، چرچ سے مراد ایمانداروں کا مجمع، یعنی کہ ان کا صرف اور صرف دھیان خدا کے فضل پر کہ جو کام اس نے تمام کیا اس میں اپنی زندگی کو بسر کرنا، اور کلام جو یسوع مسیح کی عقل ہے دی گئی تاکہ مسیح کے جیسے ہمارا مجاز ہو. سو روح القدس کی قدرت دی گئی تاکہ ہر ایک مسیحی مسافر سفر کو پورا کرے. ہم اس زمین پر مسافر ہیں اور روح القدس کی قدرت ہمیں دی گئی ہے تاکہ اس مسیحی سفر کو پورا کریں. اس کے بغیر ہم اس سفر کو اور کوئی بھی سفر کو پورا نہیں کر سکتا. لیکن آج سوال ہے کہ آپ کہاں پر ہیں، آپ کہاں پر ہیں، اور جو قدرت آپ کو دی گئی ہے اسے آپ کس طرح استعمال کر رہے ہیں. مسیحی زندگی جو ایک مسافرانہ زندگی ہے زمین پر، آپ اس سفر میں کہاں پر ہیں؟ کہیں کھوئے ہوئے تو نہیں؟ آج بہت سے مسیحی ایماندار کھوئے ہوئوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، کھوئے ہوئے کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. انہیں اپنے راستے کے بارے میں نہیں پتا، انہیں اپنی منزل کے بارے میں نہیں پتا، انہیں اپنی حالت کے بارے میں نہیں پتا، اور انہیں اپنی صورت کے بارے میں نہیں پتا، اور انہیں اپنے راستے کے بارے میں بھی نہیں پتا. مسافر جب بھی کوئی سفر کرنے کے نکلتا ہے، خواہ وہ کسی بھی ملک میں جائے، اس کے پاس یہ معلومات ہوتی ہے کہ اس نے کون سی بس لینی ہے، کون سی ٹرین، اور کہاں سے جہاز کو پکڑنا ہے تاکہ اپنے مقام پر پہنچے. آج مسیحی ایمانداروں سے یہ سوال ہے کہ آپ کے پاس وہ کون سا ذریعہ ہے جو آپ کو صحیح راستہ دکھا سکتا ہے، وہ کون سا ذریعہ ہے جو آپ کی منزل طے کرنے کے لیے آپ کا مددگار ہے. کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو خداوند آپ کو برکت دے، اگر نہیں جانتے تو آج خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے. بائبل مقدس وہ نقشہ ہے جو ایمانداروں کو دیا گیا ہے تاکہ اس زمین پر اس مسیحی مسافر کی طرح اس سفر کو پورا کریں. بائبل مقدس کے بغیر نہ ہی ہم جان پائیں گے کہ ہماری منزل کہاں پر ہے، نہ ہی جان پائیں گے کہ کس راستے پر جانا ہے، کیونکہ جو راستہ زندگی کو جاتا ہے وہ کٹھن راستہ ہے. اور متی کی انجیل میں متی رسول کہتا ہے کہ جو کھلا راستہ ہے اس پہ جانے والے بہت ہیں، لیکن جو تنگ اور دشوار راستہ ہے اس کے جانے والے بہت تھوڑے ہیں. کیوں اس کے جانے والے بہت تھوڑے ہیں؟ کیوں اس راہ کو بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں؟ کیوں راستے میں ہی ان کا دم ٹوٹ جاتا ہے؟ کیوں ان کی امید جاتی رہتی ہے؟ کیوں وہ اپنی سفر کو، اپنی منزل کو چھوڑ دیتے ہیں، انہیں اسے پورا نہیں کرنا چاہتے یا کر نہیں پاتے؟ کیونکہ نقشے سے واقفیت نہیں، نقشے کو اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دیتے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنی ابتدائی مسیحی زندگی کو شروع کیا تو کوئی سمجھ، کوئی بوجھ نہیں تھی کہ کدھر جانا ہے، کہاں جانا ہے. بہت سے لوگوں سے سوال پوچھا کہ در حقیقت مسیحی زندگی ہے کیا، کس طرح اسے گزارا جائے، لیکن بہت سے لوگوں کے پاس، بہت سے خادموں سے کوئی بھی جواب نہ ملا. لیکن اب آ کر ان ساری مشکلات سے گزر کر اس بات کا پتہ چلا کہ وہ کون سا ذریعہ ہے جو میرے مسیحی سفر میں میرا سب سے زیادہ مددگار ہے، وہ ہے بائبل مقدس، جو نقشے کے طور پر ہر ایک ایماندار کو دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے سفر کو طے کرنے والا بنے، اس زمین پر مسافرانہ زندگی بسر کرتے ہوئے. اور مجھے یاد ہے کہ میں اور بھائی ذوالفقار مسیحی فلم کے بارے میں بات کر رہے تھے، جس کا فلم کا نام تھا مسیحی مسافر. اور میری خواہش ہے کہ خدا ممکن کرے تو آپ اسے دیکھیں، تمام کلیسیا دیکھے، کہ مسیحی مسافر کی در حقیقت صحیح منزل اور پہچان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اسے کس طرح کے وادیوں سے گزرنا ضرور ہے. مسیحی مسافر کی زندگی کا مقصد اس زمین پر کیا ہے، اپنی منزل کو جانا. اور جب میں نے اس بات کو جانا تو میں نے اس بات میں یہ بات اور یہ سچائی پائی کہ نجات کے بعد صرف یہی نہیں کہ میں مسیحی ہوں، بڑے دن پر یا ایسٹر پر یا اور دوسرے تہوارات پر گیا اور بات ختم اور مسیحی زندگی کا ڈرامہ ختم. نہیں، تب میں نے اپنے پاسٹر سے، اپنے دوست سے جو خدا نے میری زندگی میں بھیجا، اس نے سکھایا کہ خدا تیرے لیے ایک منصوبہ رکھتا ہے، خدا کا مقصد ہے کہ مسیحی زندگی گزاری جائے. وہ مسیحی زندگی صرف اور صرف بائبل مقدس، جو ہمارے لیے نقشے کے طور پر دی گئی ہے، اس کی رہنمائی میں، اس کی تربیت کے بغیر وہ سفر طے کرنا بہت ہی مشکل ہے. آپ اپنے قانونی میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے شہر میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے ملک میں دیکھ سکتے ہیں، بہت سے ایمانداروں کی دوڑ کیوں رک گئی، بہت سے ایمانداروں کا سفر کیوں ختم ہو گیا، کیوں ان کے دم ٹوٹ گئے، کیوں ان کے حوصلے ٹوٹ گئے؟ کیونکہ نقشے سے واقفیت نہیں. آج ہمارے موجودہ دور میں اتوار کو چرچ گئے، کیا میسج ہو رہا ہے جی؟ یوحنا کی انجیل میں سے میسج ہو رہا ہے. او بہت اچھے، اگلے اتوار کرنتھیوں کے خط میں، اگلے اتوار 10 احکام پر، اگلے اتوار اور کسی بات پر. لیکن صحیح طور پر نقشے کی سمجھ نہیں آتی کہ مجھے بائبل مقدس، جو میرے لیے نقشہ ہے، کیا تعلیم دیتی ہے. اسی لیے میں نے اپنے پاسٹر سے جو بات چیت کی ہے، اور جو خدمت کا مقصد ہے، اس خدمت کا جو کر رہے ہیں، جو کرنی ہے، اور جس کے لیے خدا ان بہت سے لوگوں کو بلائے گا، وہ یہ ہے آیت با آیت، آیت با آیت، تاکہ ہمیں جو بھی خط، جو بھی کتاب بائبل مقدس میں شروع کریں، اس کے بارے میں پتا چلے کہ در حقیقت کیا ہے. یہ نہیں کہ ایک اتوار پرانے عہد نامہ میں، ایک اتوار نئے عہد نامہ میں، اور ایک جمعہ دنیا کی باتوں میں. اس طرح مسیحی زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ سسٹمیٹک यानी कि हमें बड़े अच्छे तरीके से आयत बा आयत, स्क्रिप्चर टू स्क्रिप्चर खुदा के कलाम में से सीखने की जरूरत है, और यही हमारा गोल है। ये था नक्शा। और बाइबल मुकद्दस हमें और क्या बताती है? रूह कुद्दस की कुदरत ईमानदारों को मसीही सफर गुजारने के लिए दी गई, और ये सफर जो बाइबल मुकद्दस हमारे लिए नक्शा है, और रूह कुद्दस हमारी ताकत है, हर एक ईमानदार के अंदर सुकूनत करता है जब वो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, उस वक्त रूह कुद्दस की कुदरत उसके अंदर सुकूनत करती है। और ये रूह कुद्दस की कुदरत इसलिए दी गई ताकि जमीन पर मसीह के लिए मुसाफराना जिंदगी, मसीह की नुमाइंदगी करते हुए जमीन पर जिंदगी गुजारें। और जबूर नवीस हमें सिखाता है, जब हम जबूर 18 उसकी 30वीं आयत को देखते हैं तो क्या लिखा है? लेकिन खुदा का कलाम, खुदा की राहें कामिल हैं। खुदा का कलाम क्या है? ताया हुआ है। वो रूह कुद्दस की आग हमें ईमानदारों को दी गई है, और खुदा का कलाम रास्ता है, उसके रास्ते कामल हैं। और उन सब की वो सिपर है जो उस पर भरोसा रखते हैं। हमें इस नक्शे को अपनी जिंदगी में और इस रूह कुद्दस की कुदरत को अपनी जिंदगी में मौका देने की जरूरत है, ताकि खुदा बाप के मंसूबे को पूरा करें। आप हर एक के लिए, आप जो यहां पर बैठे हैं, कहीं पर भी सुन रहे हैं, आपके लिए खुदा बाप का मंसूबा है। और वो मंसूबा क्या है? कि आप उसकी मर्जी को इस जमीन पर पूरा करें। हम मकाशवा की किताब में देखेंगे आगे चलकर कौन से और अजर ईमानदारों के लिए है। आज सवाल यह है कि क्या हम अपने रास्ते से वाकिफ हैं? क्या जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, क्या वो रास्ता दुरुस्त है? क्या वो रास्ता जिंदगी की तरफ जाता है या तारीकी की तरफ? क्योंकि जो कोई उसके कलाम पर भरोसा करता है, खुदावंद का कलाम उनके लिए रास्ता है, और उन सब के लिए क्या है? उसके काम बाफायदा हैं। जबूर नबीस बड़े वाजह तौर पर कहता है, क्या आज जैसे जबूर 56 उसके 4 आयत में लिखा है, मेरा फखर खुदावन पर और उसके कलाम पर है, क्या आज हमारा भरोसा तवक्कुल उस सच्चाई के कलाम पर है जो नक्शा है हमें दिया गया? पर तवक्कुल, मेरा तवक्कुल खुदावन पर है, मैं डरने का नहीं किसी से भी। किसी भी तरीके से, दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से, खौफ से डरने की जरूरत नहीं जब हमारे पास सही सलाहकारी के लिए बाइबल मुकद्दस जो कलाम है, खुदा है, नक्शे के तौर पर दी गई है। और सिर्फ हम इस सफर को इस बिना पर ही पूरा करने वाले बनेंगे। अदरवाइज आप अपनी हमेशा की जिंदगी को नहीं खोएंगे। अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो आप उसके बेटे और बेटियां हैं, और वो अपने कलाम के खिलाफ नहीं जाता। अगर खोएंगे तो वो अजर, वो बरकात, वो इख्तियारात, वो कुदरत, वो औदा जो खुदावन खुदा ईमानदारों के लिए रखता है। आज जो सफर आप कर रहे हैं, क्या उसमें आपके साथ कोई दौड़ रहा है? अगर आपके कोई दाएं बाएं या आपके साथ किसी ने हाथ में हाथ डाला हुआ है तो खुदावंद आपको बरकत दे और ताकत पर ताकत पाते जाए और ईमान से ईमान बढ़ता जाए और कामलियत में कामल होते जाए और रासबाजी में रासबाज बनते जाए और मसीह की पहचान में जोरावर होते जाए। क्योंकि मसीही जिंदगी का सफर वादिये बुका की उस हकीकत को बाखूब हम जानते हैं, हमने सीखा है। आज आपके साथ उस सच्चाई को फिर शेयर करूंगा। मेरे साथ निकालें जबूर 84। قرآن نامہ میں سے، خداوندہ تو لشکران دا خدا ہے، ٹھکانہ تیرا مینوں چنگا لگا ہے، میری جان جاندی تیری بارگاہ نوں، میرا من میرا تن وی کردا سنا ہے۔ کیوں اس وقت کے ایمانداروں کے دل کی خواہش اور ان کے دل کے بول اور ان کے گانے کی جو دھن ہے وہ کیا ہے؟ خداوندہ تو لشکران دا خدا ہے، یعنی کہ جو لوگ جنگ کے لیے نکلے ہیں، سفر کے لیے نکلے ہیں، ان کا تو خدا ہے، اور ہماری اس ساری مسافرت کے دور میں تو ہمارے ساتھ ہے۔ خداوندہ تو لشکران دا خدا ہے، ٹھکانہ تیرا۔ وہ دل سے اس خداوند خدا کی حضوری کو، اس کے ٹھکانے کو، اس کے رہنے کی جگہ کو جو پرانے نامہ میں ہیکل، جسے ٹابرنیکل کہا گیا ہے، یعنی کہ خامہ تجمع اور ہیہت کا صندوق، اور یہاں پر خدا ظاہر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ دل سے، دل سے زبور نویس کہتا ہے کہ زبور 84 اس کی 5 آیت میں، مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سہون کی شاراہیں ہیں، جس کے دل میں خداوند کے مقدس کے دعوت کے شہر کی، جہاں پر خداوند کی حضوری ہے، اس راستے پر جانے کے لیے ان کے دل پر اس کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ اور کیا لکھا ہے؟ وہ وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ وادی بکا کا مطلب ماتم کی وادی، آنسوؤں کی وادی، دکھ کی وادی سے گزر کر، اور اس وادی میں جو درخت اس قسم کے پائے جاتے ہیں، اسے بلسام کا درخت، یعنی کہ اس میں سے جو گوند ٹپکتی تھی وہ آنسوؤں کی مانند ہوتی تھی۔ اور جب ایماندار سہون، یعنی کہ خداوند کے گھر کی طرف اور اس ضیافت کے لیے اس سفر کو کرتے ہوئے جاتے، تو ہاتھوں میں ہاتھ اور اس نغمے کو گاتے ہوئے جاتے کہ اے خداوند تو لشکروں کا خدا ہے، تیرا مسکن کیا ہی دلکش ہے، میری جان خداوند کی بارگاہ کی مشتاق ہے۔ کیا آج ہماری جان اس کی بارگاہوں کی، اس کی حضوری کی، ایمانداروں کے مجمع کی مشتاق ہے؟ اور ہیکل میں وہ کیا کرتے تھے؟ خدا کا کلام سیکھتے تھے۔ اور آج موجودہ دور میں چرچ، ایمانداروں کا مجمع، جہاں دو یا تین اس کے نام سے اکٹھے ہوں گے، خداوند کہتا ہے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا۔ آج آپ اپنے سفر میں دیکھیں، آپ کے سفر میں جو مسیحی مسافرانہ سفر ہے، اس میں کون کون آپ کے ساتھ ہے؟ کیا آپ کا ماں، کیا آپ کی ماں، باپ، بہن، بھائی، بزرگ، بچے، آپ کی کلیسیا میں سے آپ کے بہن اور بھائی، دوست، کیا کوئی ہے؟ اگر ہے تو ہاتھوں میں ہاتھ تھام کر زور سے زور پاتے جائیں۔ اور واز کی کیا کتاب میں کیا لکھا ہے کہ اگر دو ہوں گے تو ٹوٹ بہت ہی جلد ٹوٹ جائیں گے، اور اگر تین ہوں گے تو وہ مشکل سے توڑے جائیں گے۔ ایک ہو تو وہ آسانی سے گر جاتا ہے، دو ہو تو وہ ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں، اگر تین ہو تو ان کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ جب خداوند میں ہماری، خداوند سے ہماری قوت اور طاقت زور آتا ہے، تو پھر زبور نویس کہتا ہے کہ خداوند تو ہماری سپر اور ڈھال ہے۔ خواب کا سفر موت کے سایہ کی وادی میں سے ہو، آنسوؤں کے ساتھ ہو، ماتم کے ساتھ ہو، ان کے دل میں یہی بات تھی کہ وہ خداوند کے جب حضور پہنچیں گے تو ان کی روحیں سکونت پائے گی، اور وہ ان ساری برکات کو حاصل کرتے ہیں، اور وہ طاقت پر طاقت پاتے جاتے ہیں۔ آج ہمارے لیے بھی یہ طاقت آپ کے اندر، ایمانداروں کے اندر روح القدس کی طاقت بخشی گئی ہے، تاکہ اس مسیحی سفر کو ختم کریں، اور مسیحی سفر کو کرنے کے لیے روح القدس کی قدرت۔ और बाइबल मुकद्दस जो के नक्शे के तौर पर दी गई है। और यसाया नबी इसे बड़े वाजिया तौर पर कहता है मेरे साथ है कि यसाया 40वां बाप उसकी 31वीं आयत में क्या लिखा है, मेरे साथ निकालें यसाया 40वां बाप उसकी 31वीं आयत में। खुदावंत का बंदा यसाया कहता है, लेकिन खुदावंत का इंतजार करने वाले, क्या आज हम और कोई भी ईमानदार उसका इंतजार करता है कि वो हमारी रहनुमाई करे, कि वो हमें बताए कि हमें किस तरफ जाना है। और वो आप पर जमीन पर उतरेगा नहीं, बल्कि उसने अपनी अकल अपना कलाम दिया है और वो आप से अपने कलाम के वसीला से बोलेगा, अपने खादमों के वसीला से बोलेगा जब खुदा उनका कलाम उनके मुंह से निकलेगा। और लिखा है कि खुदावन का इंतजार करने वाले अरसरे नो जोर हासिल करेंगे, वो अकाबों की मानद बाल पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। क्या हमारा जोर हमारी कुव्वत खुदावन की तरफ से है या फिर पुरानी इंसानियत की तरफ से है? क्या हमारा फख्र खुदा के कलाम पर है या अपनी कुव्वत पर या अपनी अकल पर है? खुदावन खुदा के ख्यालात, खुदावन फरमाता है यर्मिया नबी के मार्फत, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, हर एक ईमानदार के लिए खुदा कहता है, मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावन फरमाता है, यानी के सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि तुमको नेक काम की उम्मीद बख्शूं। और पालूस उसूल से कहता है, इस तरह मुझे इस बात का भरोसा है, फिलिपियों 1 बाप उसकी 6 आयत में, इस बात का भरोसा है जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा, वो चाहता है कि ये सफर हाथों में हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर और हमारे गीत की एक ही धुन हो, हमारे नारे की आवाज एक ही हो, कि सारा जलाल उस लश्करों के रब को मिले और रूहुल कुद्दस की कुदरत में इस धुन को गाते हुए, इस गीत को गाते हुए, कैसे भी दुख हो, कैसी भी मुसीबत हो, कैसी भी तकलीफ हो, कैसे भी हालात हो, चलने की जरूरत है। दो बुनियादी जरिए ईमानदारों को दिए गए हैं कि बाप की मर्जी पूरी की जाए। आज मैं जानता हूं कि मेरे लिए खुदा बाप का मंसूबा क्या है, बेशक पूरे तौर पर नहीं, बल्कि हर रोज दिन बा दिन जैसे उसके कलाम से वाकिफ हूंगा, वो अपनी मर्जी को मुझ पर हर एक पर जाहिर करेगा। और ये कैसे है? नक्शे से वाकफियत होने की जरूरत है कि नक्शा किस राह की तरफ हमें लेकर जा रहा है। और जो कुदरत सच्चाई का रूह दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि आंधा जहां की खबरें दे, ताकि हम अपने रास्ते को तय करें। वक्त बहुत थोड़ा है, आए मेरे साथ देखें मुकाशवा की किताब में चलें। आपके साथ वो लिस्ट जो ईमानदारों के लिए अजर के तौर पर खुदावन खुदा रखता है, जो गालब आएंगे। जब हम काशफा की किताब में 7 कलीसियाओं को देखते हैं, तो वहां पर खुदा का जो फरिश्ता, यानी कि कलीसिया के फरिश्ते को लिख, ईमानदारों को और पासबान को फरिश्ता के तौर पर बयान किया गया है। कलीसिया को और पासबान को, सबको लिखा गया है। जब हम नोट करना शुरू करें, मुकाशवा 2 बाप उसकी 7वीं आयत को देखते हैं, तो लिखा है, जो गालब आए मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से, जो खुदा के फरदौस में है, फल खाने को दूंगा। ये जो गालब आने वाले ईमानदार हैं, उनके लिए पहला अजर है मुकाशवा की किताब में। और दूसरा, जब हम ग्यारहवीं आयत को देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा है, जो गालब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना होगा। और इसके बाद जब हम सतारहवीं आयत को देखते हैं तो लिखा है, जिसके कान हो वो सुने के रू कलीसियाओं से क्या फरमाता है, जो गालब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और हार और एक सफेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई ना जानेगा। उसे पोशीदा मन में से दिया जाएगा, एक सफेद पत्थर मिलेगा जिस पर उसका नया नाम लिखा होगा। ये गालब आने वाले ईमानदारों के लिए है। और इसी तरह फिर जब हम दूसरे बाब की 27वीं आयत को देखते हैं तो 27वीं आयत में लिखा है कि जो कोई गालब आए, क्या लिखा है उनके लिए, मैं यीशु मसीह कहता है कि जैसे मैं बाप के तख्त पर बैठा हूं और मैं मेरे पास इख्तियार है, 28वीं आयत में कहता है खुदावंद का कलाम, और मैं उससे सुबह का सितारा दूंगा। सुबह का सितारा ईमानदारों के लिए। फिर तीसरे बाप की जब हम पांचवीं आयत को देखते हैं तो लिखा है, जो गालब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी, सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटा जाएगा। और क्या लिखा है कि यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने बाप के फरिश्तों के सामने, अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करेगा। और इसी तरह तीन बाप उसकी बारहवीं आयत में लिखा है, जो गालब आए मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है उस पर लिखूंगा, उस पर नया नाम लिखूंगा। ईमानदार उस नए यरूशलेम में सतून की मानद होंगे जिस पर उनके काम जो रूहुल कुद्दस की कुदरत में किए गए होंगे हिस्ट्री के तौर पर लिखे जाएंगे कि उन्होंने यीशु मसीह के लिए कितनों को खुदा का कलाम सुनाया, कितनों ने अपनी जिंदगी खतरों में डाली और यीशु मसीह से ना शर्माए। यीशु मसीह के लिए उन्होंने बहुत से काम होंगे जो सैतून की तरह ईमानदार उसमें होंगे और उस पर लिखे जाएंगे और खुदा का नाम और ये नए यरूशलम में उसे नया नाम और सतून के तौर पर होगा। इसी तरह हम आगे चलकर देखते हैं तीसरे बाब की जब 21वीं आयत को देखते हैं, जो गालब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। गालब आने वालों के लिए, जिस तरह मैं गालब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया, और ये वो क्या हैं, अनामात हैं ईमानदारों के लिए। तख्त पर बिठाया जाएगा, खुदा के नए यरूशलेम में सतून की मानद होंगे, नई सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और क्या उनको दिया जाएगा, सुबह का सितारा दिया जाएगा। और फिर क्या क्या कहा गया है कि एक सफेद पत्थर जिस पर उसका नाम जो उसे पाएगा लिखा होगा। खुदा के जिंदगी के दरख्त में से जो फरदोस में होगा उसमें से खाने को मिलेगा। जो गालब आएगा उस पर दूसरी मौत का असर और उसे कुछ नुकसान ना होगा। ये सब चीजें, ये सब बड़े इनामात क्यों ईमानदारों को खुदावन देना चाहता है, हम कल खुदावन के फजल से सीखेंगे कि इसका पीछे क्या मकसद है। आए हम खुदावन के हजूर झुकें और इस बात को याद रखें कि आज जो सफर आप कर रहे हैं आपके साथ कौन है। अगर कोई नहीं तो क्या आप उस नक्शे को, उस ताकत को जो कुव्वत दी गई है इस्तेमाल कर रहे हैं सफर को पूरा करने के लिए। अगर नहीं कर रहे तो बहुत ही नुकसान की बात है। वो अजर, वो ताज, वो इख्तियारात, वो कुदरत खो देंगे। मसीही जिंदगी में खुदा बाप ने जो आपके लिए मकसद रखा है उसे जाने। मैं आपको सिर्फ टीच कर सकता हूं, लेकिन आपको अपना तल्लक हर रोज उसके साथ बनाने की जरूरत है, ताकि रूहुल कुद्दस आप पर जाहिर करे कि आपकी खिदमत क्या है, आपका मसीही जिंदगी में मसीही सब मुसाफिर होते हुए रोल क्या है। आए हम खुदावंद के हुजूर झुके। आसमानी बाप, सारे कलाम के लिए तेरा शुक्र हो, सुनने वालों को बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन।